शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति का पाठ तो सबको पक्का हो गया ना। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आज इस संध्याकालीन खुले सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आज के इस खुले सत्र में। आज हमारे बीच में बहुत महान विभूतियां, जिनको आप सुनना चाहेंगे बड़े प्यार से, वो आए हैं। मैं उन सभी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी शारदा देवी जी, राजयोगिनी उषा बहन जी, भ्राता मोहन सिंगल जी, बहन रेनू भाटिया जी, बहन मधु शर्मा जी, बहन मनन चतुर्वेदी जी, ब्रह्मा कुमारी बंबई से आए हुए राजयोगिनी शीला बहन, सभी ताली बजा करके हमारे वक्ताओं का अभिनंदन करेंगे। मैं मुंबई की बहनों से अनुरोध करती हूँ मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं का पुष्प गुच्छों से और बैजी से स्वागत करेंगे और हम सब जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे और इतना जोर से ताली बजाएंगे कि जो बाहर घूम रहे हैं वो ताली की आवाज सुनकर जल्दी से जल्दी हॉल में पहुंच जाएंगे। आज है आदरणीय शारदा दीदी जी, ताली बजाएंगे। प्रातः मोहन सिंगल जी, बहन मधु शर्मा, आज है विशेष दिन। जो शिव शक्तियां यहाँ पधारी हैं, एक नया अध्याय पाने की हम सबकी तैयारी है, अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ कुमारी वेदिका, आप सबके सामने एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। कोल्हापुर से आई कुमारी वेदिका, बहुत सुंदर नृत्य है जिसके शब्द हैं, कोमल है कमजोर नहीं तो शिव की शक्ति ही नारी है। बहुत सुंदर कुमारी वेदी का धन्यवाद आज के ऐसे ही शिव का झंडा सारे विश्व में और हम सबके दिल में लहराता रहे। आज का विषय है आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन। आधुनिकता किसको कहेंगे? 21वीं सदी की नारी जिसके पास आज अच्छी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नौकरी है अथवा व्यवसाय है, आगे बढ़ने के बड़े अच्छे अवसर हैं, वो समझती है कि मैं आधुनिक नारी हूं। उसमें फैशन, मोबाइल, इंटरनेट से जुड़ना, इन सबको हम आधुनिकता मानते हैं। और अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चे या बहने इन सब चीजों का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर उसके साथ ही समाज वाले ये भी कहते हैं कि ये तो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं। आज सब आधुनिकता के साधन होते हुए भी जीवन के अंदर वो सुख, शांति, खुशी नहीं है। इसलिए सब कुछ साधन होते हुए भी अगर हम किसी से पूछते हैं, कहिए क्या हालचाल है आपके, तो रेस्पॉन्स क्या मिलता है? ठीक है, चल रहे हैं, जिंदगी के दिन हैं, काटने हैं, काट रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो खालीपन है, खुशी नहीं है, तो कुछ ना कुछ मिसिंग पॉइंट है और वो है आध्यात्मिकता। कई बार हम ये भी समझते आध्यात्मिकता अर्थात मंदिरों में जाना, गेरवे कपड़े पहनना, पूजा पाठ करना, भय होता है। तो आध्यात्मिकता किसको कहेंगे जिससे हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आए, इन दोनों का संतुलन बनाकर हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, इसी विषय पर अपने बहुत सुंदर विचार रखने के लिए आज हमारी सभा में महान विभूतियां आई हैं। हम सब उनका वक्तव्य सुनेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी को। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, 28 वर्षों तक आप ONGC में कार्यरत रहे। 1996 में आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आप बिहार, आसाम, गुजरात में इस संस्था की कई शाखाएं खोलने के निमित्त भी बने। आप राज्योग शिक्षा शोध संस्थान के गवर्निंग बॉडी सदस्य भी हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको पर्यावरण श्री अवार्ड से भी नवाजा गया है और 2013 में ग्रीन आइडल अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और अभी हम सुनेंगे आदरणीय दाता मोहन जी के विचार।
ओम शांति। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज के कार्यक्रम के हमारी चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगिनी शारदा बहन जी, हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मनन चतुर्वेदी जी, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती मधु शर्मा जी, श्रीमती रेणु बंदिया जी, हमारे आज की मुख्य स्पीकर ब्रह्मा कुमारी उषा बहन, तथा राजयोग कराने के लिए यहाँ विशेष जो पधारी हैं ब्रह्मा कुमारी शीला बहन जी, और मंच संचालन करती हुई शील बहन जी, तथा सभा में उपस्थित आप सभी बहनों और भाइयों, आज का विषय बहुत ही सुंदर है और आज के समय को लगता हुआ है, क्योंकि जैसा कि हमारे मंच संचालिका बहन जी बता रहे थे, अक्सर करके आध्यात्मिकता को ऐसा समझा जाता है पूजा पाठ मंदिर आदियों में जाना, और आधुनिकता का विश्लेषण उन्होंने बहुत अच्छा किया। वास्तव में जीवन में आवश्यकता इन दोनों चीजों की है, दोनों का संबंध जीवन से है, बस अंतर इतना ही है कि मॉडर्निटी जो आधुनिकता है उसका जीवन के बाहरी पहलू से संबंध है, और आध्यात्मिकता का जीवन के आंतरिक पहलू से संबंध है। लेकिन दोनों ही वास्तव में देखा जाए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। आधुनिकता इसलिए आवश्यक है कि समय के साथ साथ चलने के लिए कुछ बातों को अपनाना पड़ता है, इसलिए आधुनिकता जरूरी है। लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ऐसे पेपर जाते हैं जिनमें बहुत आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है उनका सामना करने के लिए, इसलिए यह भी आवश्यक है कि आध्यात्मिकता सही रीति से जानकर उस पर जीवन में अमल किया जा सके, और इतना आंतरिक सशक्तिकरण किया जाए जो कि हम हर परिस्थिति का जीवन में सामना कर सके। इसलिए आज के विषय में मुख्यतः तीन भाग हैं, बैलेंसिंग संतुलन और आध्यात्मिकता तथा आधुनिकता। तो मुख्य जैसा आपको बताया जा रहा था, दोनों का संबंध आधुनिकता और आध्यात्मिकता का जीवन के से डायरेक्ट संबंध है, और इसके अंदर जीवन में मुख्यतः कुछ बातें आती हैं जो जीवन चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संबंधों में मधुरता आदि आदि। तो इसका भी वास्तव में जानते हुए, जहां तक इसके भौतिक पहलू का सवाल है, हम सभी उससे परिचित हैं, भोजन से, कपड़ा से, मकान आदि सबसे, लेकिन आधुनिकता हमें एक नया विश्लेषण सिखाती है कि यह शरीर इसका संबंध डायरेक्ट आधुनिकता से है, जबकि इसके अंदर जो चैतन्य सत्ता है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, उसका संबंध आध्यात्मिकता से है। इसलिए जहां भोजन, स्वस्थ और संतुलित भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, वहां आत्मा के लिए यह अभी आवश्यक है कि शुद्ध एक सकारात्मक संकल्पों का भोजन हो प्रतिदिन, और जितना यह भोजन जीवन में होगा उतना ही हमारे जीवन में सकारात्मकता आती जाएगी और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। कहा जाता है खाओ वैसा जैसा मन भाए, पहनो वैसा जैसा जग भाए, एक पुरानी बात है। तो ये शरीर के कपड़े की बात है, वास्तव में आत्मा का वस्त्र ही यह शरीर है, और इस कारण से शरीर को भी जैसे वस्त्र हम ध्यान रखते हैं, स्वच्छ हो, साफ हो, ऐसे ही हमारा यह शरीर भी हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो, साफ हो और निरोगी हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी कहा जाता है पहला सुख वो निरोगी काया। जैसे ये भौतिक स्वास्थ्य आवश्यक है शरीर का, बीमारियां ना हो, ऐसे ही संपूर्ण होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी आ जाती हैं, इस प्रकार से जीवन के सभी पहलुओं को देखा जाए तो ये आवश्यक है कि उसका होलिस्टिक विवेचन किया जाए। केवल भौतिक ही नहीं, भौतिक तो हम करते हैं लेकिन भौतिक के साथ साथ उसका आंतरिक भी। तो इसलिए ये बड़ा किसी ने कहा है ठीक कि हम जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। वास्तव में भौतिकता की तरफ हमारा ध्यान रहता है और इस कारण से हम उसी के ही सब मीन्स अपनाते हैं, लेकिन आवश्यकता है अपने अंदर भी झांकने की, आध्यात्मिकता की। तो इसलिए अब हम एक विशिष्ट पहलू पर आते हैं, बैलेंस, दोनों का कैसे बैलेंस रहे, ये बहुत आवश्यक है। बैलेंस के लिए दो विपरीत बातें, जैसे तराजू होता है दो पलड़े होते हैं, और जब बैलेंस हो जाता है तब समझा जाता है कि वह क्रिया पूरी हुई और उसके बाद लेन देन होता है। इसी प्रकार से अगर दोनों में बैलेंस रहेगा तो जीवन में किन किन चीजों का बैलेंस आवश्यक है, एक बात का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है, दूसरी बात का संबंध आधुनिकता से है, मॉडर्निटी से है। तो एक बात है अलर्ट एंड रिलैक्स। अलर्ट जीवन में जो भौतिक पहलू है उसमें अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है, जागरूक, क्योंकि आज जीवन में अनेक प्रकार के स्कैन देखने में आते हैं, कई प्रकार की दुविधाएं मन में होती हैं। तो इसलिए अलर्ट भी रहे साथ साथ रिलैक्स भी रहे। बहुत अलर्ट रहते हैं स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से हम रिलैक्स रहे, और ये रिलैक्स रहना ये आध्यात्मिकता सिखाती है। और हम भौतिक रीति से तो जानते हैं कैसे अपने शरीर को अलर्ट रखा जाए, एक्टिव रखा जाए, इसमें उसके बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हम सब लोग बहुत बिजी हैं, कहते हैं भाई टाइम नहीं है, हर एक का यही कहना है भाई समय नहीं है, बहुत कम है। तो बिजी हैं, लेकिन विशेषता यही है कि बिजी के साथ हम इजी भी रहें। बिजी रहना अच्छा है लेकिन बिजी के साथ साथ हम बिल्कुल हल्के रहें, और जितना हल्के रहेंगे समय पर सही निर्णय ले सकेंगे, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और उससे क्या होगा, हल्के भी रहेंगे और जीवन में सफलताएं आती जाएंगी। और ये इजी रहना आध्यात्मिकता सिखाती है। ये आध्यात्मिकता में अलग अलग जो राजयोग शिविर के जो लेक्चर चल रहे हैं, कल आपको राजयोग मेडिटेशन का भी बताया जाएगा, किस व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ मेडिटेशन, उसमें इस बात को और स्पष्ट किया जाएगा। तीसरा है जीवन में डिटैच्ड एंड इन्वॉल्व। देखिए ये सभी चीजें एक दूसरे से रिवर्स हैं, विपरीत हैं, लेकिन वास्तव में विपरीत नहीं है। बैलेंस तभी है जब तराजू के दोनों पहलू में ये बात हो, डिटैचमेंट एक तरफ, इन्वॉल्वमेंट एक तरफ। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि डिटैच भी रहें, और इसका भाव क्या है ये ट्रस्टीपन से बहुत समझा जा सकता है सहज रीति से, कि ट्रस्टी होता है उसको मालूम है सारी प्रॉपर्टी वो डील करता है, लेकिन डिटैच रहता है क्योंकि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ही इज ओनली मैनेजिंग इट। तो इस कारण से डिटैचमेंट भी जरूरत है, और साथ साथ उसके अंदर वर्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी हो। वो डिटैचमेंट आध्यात्मिकता सिखाती है, इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है जो गीता में, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। वास्तव में ऐसा है नहीं, कर्म तो कई बार होता ही तब है जब फल पहले माइंड में होता है। आप यहाँ पर आए हैं, ये फल माइंड में था कि ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर माउंट आबू जा रहे हैं, वहाँ योग और शिविर ज्ञान आदि की बात होगी, तो ये फल था, और इसलिए आप यहाँ पर आए और यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कहना वास्तव में उतना यथार्थ नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, बल्कि इसका वास्तविक इस रीति से इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, कर्म करते वक्त हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट हो, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन फल के समय, रिजल्ट के समय उससे डिटैचमेंट हो। क्योंकि अगर रिजल्ट इज नॉट एज पर अवर एक्सपेक्टेशन तो क्या होगा, वी विल कम डाउन टू द अर्थ। रिजल्ट हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो बहुत निराशा होने की संभावना है। इसलिए कर्म करते वक्त फुल इन्वॉल्वमेंट हो, रिजल्ट के वक्त डिटैचमेंट हो। इसी तरह एक चौथी बात है इसके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फर्मनेस। जीवन में फर्मनेस भी हो यह आवश्यक है। कई बार डिसीजन लिए जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन फर्मनेस हो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। जितना एडजस्टमेंट की शक्ति होती है उतना मनुष्य में जीवन में सफलता आती है। फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट, और पानी होता है मोस्ट फ्लेक्सिबल। एडजस्टमेंट की ताकत है पानी में, गिलास में लो गिलास में, कटोरी में लो कटोरी में, हर जगह सेट हो जाता है। इसी कारण से वो सदा बहता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, वो रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है पानी का। इसी प्रकार से जहां एक तरफ फर्मनेस आवश्यक है जीवन में, वहां फ्लेक्सिबिलिटी भी आवश्यक है कि जीवन के अंदर हम एडजस्ट, सब हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सकें, ये बहुत आवश्यक है। एक है पांचवा बात, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्टनेस, बाह्य मुक्तता और अंतर्मुक्तता का बैलेंस। जब जहां भौतिकता की बात आती है, मॉडर्निटी की बात आती है, तो स्वतः ही हमारा अपने शरीर, शरीर के संबंध, शरीर के कार्य व्यवहार की ओर ध्यान जाता है। तो यहाँ एक्सट्रोवर्ट होने की जो आवश्यकता है, तो बाहरी रीति से चाहे हम एक्सट्रोवर्ट हों लेकिन अंदर से हम इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, और ये महसूस करके चले कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा यह कर्म कर रही हूँ, इस सृष्टि रूपी नाटकशाला में कैसे खेल रही हूँ। इन दोनों चीजों का बैलेंस, एक्सट्रोवर्टनेस एंड इंट्रोवर्टनेस। और जीवन में छठी चीज की आवश्यकता है लव एंड लॉ का बैलेंस। लॉ जीवन में कोई नियम मर्यादा है, वो सब आवश्यक है जीवन में, उसके आधार पर ही जीवन चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है। लेकिन उसके साथ साथ आवश्यक है प्रेम, जो आत्मा सिखाती है। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है, आत्मा अर्थात सोल, SOUL अर्थात सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा प्रेम स्वरूप है, और प्रेम के नाते से अगर हम हरेक को चला सकते हैं तो जितना काम प्रेम से निकल सकता है सफलतापूर्वक, उतना अपनी पोजीशन से और क्रोध से नहीं निकल सकता। यह आध्यात्मिकता सिखाती है जीवन में। साथ साथ एक और आवश्यक है जीवन में, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान भी हो लेकिन साथ साथ जीवन में नम्रता भी हो, ह्यूमिलिटी भी हो, और ये दोनों का भी अगर बैलेंस होता है तो हरेक इन सब चीजों में एक चीज जो है बाहरी भौतिकता से कनेक्टेड है और एक चीज विशेष करके आध्यात्मिकता से संबंधित है। एक और चीज है ऑफिशियल एंड इनफॉर्मल। जो भी भाई बहने कार्य करते हैं, बिजनेस हो चाहे नौकरी धंधा हो, उसमें जानते हैं कई चीज जो ऑफिशियल होती हैं वो नियम के अनुसार करनी पड़ती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है जीवन में, मैंने भी अपने जीवन में ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन में इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा 28 साल तक, और देखा कि ऑफिशियल से की लीक से हटकर भी इनफॉर्मल वे में भी कई काम होते हैं, वो ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उसमें हम मनुष्यों का दिल जीतते हैं। जबकि ऑफिशियल वे में हम अपनी पोजीशन को यूज करते हैं तो उसमें दिल नहीं जीता जाता, उसके नंबर ऑफ आवर्स परचेज करके अपनी पोजीशन से वो कार्य कराए जाते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट हार्ट का हो न हो लेकिन कार्य भले हो जाए लेकिन मनुष्य को हम जीत नहीं पाते हैं। इसमें आवश्यकता है ऑफिशियल के साथ साथ हम इनफॉर्मल भी रहे, जिन कंपनी में जिसमें हम कार्य कर रहे हैं लोगों के साथ और जिनसे भी हमारा संबंध संपर्क रहता है। और इस रीति से अंत में एक है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूओं का भी जब जीवन में समावेश होगा तो इस रीति से इन लगभग 8 वैल्यूज का अगर बैलेंस होता है, मॉडर्निटी एंड स्पिरिचुअलिटी ये दोनों विपरीत पहलू देखने में आते हैं लेकिन वास्तव में ये विपरीत नहीं है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि बैलेंस से भी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी एक कदम आगे है। आज स्पिरिचुअलिटी वास्तव में मॉडर्निटी के ऊपर उसको रूल करना आवश्यक है। आज के विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है। आप सब लोगों ने सुना होगा जापान के प्रोफेसर एमोटो का प्रयोग, उन्होंने जल के ऊपर प्रयोग किया और उन्होंने देखा हमारे विचारों का जल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। दो गिलास में पानी लिया, एक को पॉजिटिव थॉट से एक्सपोज किया, एक को नेगेटिव थॉट से, और देखा जिसको पॉजिटिव थॉट से एक्सपोज किया था उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे ऑर्नामेंटल शेप के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, और जहां नेगेटिव थॉट्स जिसमें ऐसा आई विल किल यू वाटर और लाइक दैट ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो करे गए तो उसके अंदर बड़े ही विभत्स शेप के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए हमारे विचारों का जब इतना प्रभाव बाहर दूर रखे हुए पानी पर पड़ता है, शरीर के अंदर तो हमारा 70% पानी है, इस कारण से उसके अंदर भी हमारे थॉट्स का जैसा हम सोचते हैं पॉजिटिव थॉट्स का पॉजिटिव हेल्थ के रूप में प्रभाव पड़ता है, और नेगेटिव थॉट घृणा ईर्ष्या द्वेष क्रोध काम इन सब के विचार जो है उन सब का किस प्रकार से पड़ता है, नेगेटिव रूप में पड़ता है। इसी प्रकार से एक यहाँ पर हमारा डॉक्टर्स का आपने सुना होगा डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का, तो उसमें हार्ट की आर्टरीज भी कैसे अपने थॉट्स को अगर हम जब एक्सपोज मेडिटेशन के द्वारा कि हाँ ईश्वर से मेडिटेशन में रेज आ रही है और मेरी आर्टरीज खुलती जा रही है, जब ये भी हम एक प्रयोग करते हैं तो देखा गया एंजियोग्राफी जिसमें पहले देखा गया जो आर्टरीज 95-98% तक ब्लॉकेज थी वो 3-4 महीने के अंदर कैसे कम होके 60% रह गई 65% रह गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे विचारों का प्रभाव, ये आध्यात्मिकता जो पॉजिटिव विचार हैं ये कैसे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और तीसरा एक प्रयोग किया गया हमारा एक यौगिक खेती के रूप में कि जो बीज बोए जाते हैं जमीन के अंदर उनके पहले पॉजिटिव थॉट से एक्सपोज किया, उस जमीन को भी एक्सपोज किया कि हे धरती माता ये बीज आपके अंदर बोए जा रहे हैं, इनको सब स्वास्थ्य से परिपूर्ण करना। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और उनके साथ देखा गया एक में कंट्रोल रन कन्वेंशनल फार्मिंग करी गई और एक में ये यौगिक फार्मिंग की गई, और देखा गया यौगिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट निकले वो प्रोडक्ट इतने लाभदायक इतने अच्छे थे, उनमें विटामिन लेवल काफी हाई था, उसके अंदर फैट लेवल कम था, कार्बोहाइड्रेट और जितना भी ये पॉजिटिव कंटेंट हेल्थ से कंसर्न होना चाहिए वो सब बढ़ा हुआ था और नेगेटिव चीज वो कम। भाव क्या है कहने का कि स्पिरिचुअलिटी का इसके मॉडर्निटी से सिर्फ बैलेंस ही नहीं होना चाहिए बल्कि बैलेंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को एक कदम और आगे आना होगा जिससे वो मॉडर्निटी को साथ लेकर चल सके और दोनों के समावेश से हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकें जिसके लिए आप सब यहाँ पर आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दाता मोहन जी। आधुनिकता हमें इगोइस्ट बनाती है और आध्यात्मिकता हमारी सेल्फ टीम को बढ़ाती। हम स्वावलंबी जरूर बने लेकिन स्वार्थी न बने, ऐसी शक्ति आध्यात्मिकता से ही प्राप्त होती। संसार की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति अर्थात अपने को पहचान कर अपने मन को उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ जोड़ना, तभी हमारे अंदर वो सब शक्तियां आ जाएंगी जिससे हम अपना संतुलन बनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। जैसे आप लोगों को पहले दिन बताया गया था शरीर मोटर है आत्मा ड्राइवर है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो उसको हम मेंटेन करें लेकिन अगर ड्राइवर कमजोर है तो उस गाड़ी से निश्चिंतता से हम सफर नहीं कर सकते। अगर हम लंबे सफर में जाते तो उस पहले कहते ड्राइवर को खाना खिला के अच्छी तरह से सुला दो। ड्राइवर का हेल्दी होना उसका भोजन बहुत जरूरी है शरीर मोटर है, आत्मा ड्राइवर है, तो आत्मा को शुद्ध संकल्पों का भोजन देना, आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से उसमें शक्ति भरना, ये हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे सुंदर विचार हम सब ने मोहन भाई से सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहन रेणु भाटिया जी को। आपका जीवन लाइनेस सेवा में समर्पित है 20 साल पहले लाइनेस को आपने ज्वाइन किया, विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आज आप लाइनेस क्लब के प्रेसिडेंट पद पर शोभायमान हैं। वर्तमान में आपके द्वारा 55 क्लबों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसमें 1355 लाइनेस बहनें पूर्ण सक्रियता से सामाजिक सेवाओं में जुड़ी हुई हैं। आप ग्रेजुएट हैं व आपने संगीत व इंग्लिश लिटरेचर में विशेष उपलब्धि हासिल की है। संगीत आपका पैशन है व आपने महाराणा फतेह सिंह पुरस्कार भी प्राप्त किया है। वर्तमान में आप कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। आप विशेष रूप से यहाँ पर हमारे बीच में आबू रोड की मीना गुप्ता जी के प्रयासों से आप व आपके साथ और लाइनेस बहनें यहाँ पधारी हैं। आप सभी बहनों का मैं इस मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब मैं रेणु बहन जी से निवेदन करती हूँ, वो आकर अपना वक्तव्य देंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति। All the respected dignitaries on the dais, off the dais, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। मैं रेणु बांठिया आप सभी से रूबरू हूँ अपनी सभी समाज सेवी लायनेस बहनों की तरफ से यह संदेश लेकर। हो सके तो मुस्कुराहट बांट, हो सके तो मुस्कुराहट बांट, नातों में कुछ सरसराहट बांट, नहीं पूछता कोई भी गम एक दूजे के, लोगों में थोड़ी सी जियारत बांट, जिंदगी न बीत जाए यूं ही दुख दर्द में, बेचैनियों को कुछ राहत बांट, बेचैनियों को कुछ राहत बांट। टुडेज टॉपिक इज अ टॉपिक विच कैन बी डिस्कस्ड एंडलेसली, आधुनिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन। विश्व में विचार की दृष्टि से मनुष्यों के दो वर्ग हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो लोग प्रकृति के स्वतः संचालन में किसी परम शक्ति के अस्तित्व में आस्था रखते हैं वे आस्तिक हैं, और जो प्रकृति मात्र को ही सर्वे सर्वा मानकर किसी अन्य परम शक्ति के अस्तित्व में आस्था नहीं रखते वे नास्तिक कहलाते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की जलवायु में आध्यात्मिकता ओतप्रोत है, अतः भारतीय संस्कृति कभी नास्तिक नहीं रह सकती। स्वामी जी के अनुसार आम भारतीय के मन में आध्यात्मिकता के अंकुर स्वतः फूटने लगते हैं यौवन के उन्माद में। कुछ समय तक चाहे भारत की संतान मोह के कारण सांसारिकता और आधुनिकता का जाप कर ले, किंतु सत्य के अन्वेषण का विचार जागते ही वह आध्यात्मिकता की दिशा में स्वतः मुड़ जाता है। आध्यात्मिकता अपने स्थान पर है, लेकिन हमें यह भी स्वीकारना होगा कि बिना आधुनिक तकनीकी अपनाए हमारा देश, परिवार एवं समाज का विकास संभव नहीं है। आई नो टूडेज स्टेट ऑफ वर्ल्ड इज ऑल विद अ लेस कम्युनिकेशन, वायरलेस फोन्स, कॉर्डलेस फूड, फैटलेस स्वीट्स, शुगरलेस कुकिंग, फायरलेस रिलेशन, फ्रूटलेस एटीट्यूड, केयरलेस पॉलिटिक्स, शेमलेस एजुकेशन, वर्थलेस मिस्टेक्स, countless arguments, baseless, youth, jobless, jobs, thankless, needs, endless, and salaries a bit less endless, and situation is hopeless. So this is the truth of life today. In such a scenario, when everything is moving so fast, it is becoming difficult to cope up because desires have increased and despite all efforts, they remain unfulfilled. इसी संदर्भ में ओशो से यह प्रश्न पूछा गया कि आज का मनुष्य अधार्मिक क्यों हो गया है। ओशो ने कहा, किसने कहा कि अधार्मिक हो गया है? मेरी दृष्टि में आज का आदमी चाहे पुराने ढांचे ढर्रे में न बंधा हो, इसलिए आध्यात्मिक लगता हो, अधार्मिक लगता हो, क्योंकि सत्यनारायण की कथा न सुनता हो, क्योंकि रविवार को चर्च न जाता हो, मंदिर के पुजारी के चरणों में न झुकता हो, रोज बाइबल न पढ़ता हो, तो वह अधार्मिक हो गया? नहीं, धर्म की परिभाषा आज के दौर में ऊपर उठ गई है, हमारा धर्म का मापदंड ऊपर उठ गया है, हमारी धर्म की कसौटी ऊपर उठ गई है, इसलिए आदमी अधार्मिक मालूम हो रहा है। नई पीढ़ी एक नया धर्म चाहती है, धर्म की एक नई परिभाषा चाहती है, एक नया आकाश चाहती है। और इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात सुनाना चाहती हूँ जो किन्नी स्वामी जी ने कही है, उसके अंदर एक गूढ़ रहस्य छुपा है। शराबी को किसी और संदर्भ में लीजिएगा। एक बार एक शराबी और एक पुजारी में बहस हो गई। शराबी ने पूछा पुजारी से कि सबसे बड़ा कौन? पुजारी बोला, क्योंकि वो मंदिर में रहता था, उसने कहा सबसे बड़ा मंदिर। शराबी बोला, तो वह धरती पर क्यों खड़ा? पुजारी ने कहा, तो फिर धरती बड़ी, तो धरती शेषनाग पर कैसे बड़ी? तो फिर शेषनाग सबसे बड़ा, तो शेषनाग शिवजी के गले में क्यों पड़ा? पुजारी से बनता नहीं पड़ा, उसने कहा तो फिर शिवजी बड़े, तो शिवजी कैलाश पर कैसे खड़े? शिवजी कैलाश पर कैसे खड़े? तो सबसे बड़ा कैलाश, तो वो हनुमान जी की उंगली पर कैसे आया? पुजारी थक गया जवाब देते देते, तो उसने शराबी से बोला, अब तू ही बता दे सबसे बड़ा कौन? तो इस आंसर को रिलेट कीजिएगा। शराबी ने अपने हिसाब से जवाब दिया, जो एक बोतल पी के भी दो टांगों पर खड़ा है वही सबसे बड़ा। तो मनुष्य अधार्मिक नहीं हो गया है, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, उसकी थर्स्ट को सही दिशा मिलनी चाहिए। चाहे अध्यात्म हो या आधुनिकता, हम मनुष्य की आज के जीवन में सबसे बड़ी तलाश है सुख। धन, पद, प्रतिष्ठा व शरीर से सब सुख पाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता कहती है कि मैंने तुम्हें सुखी बनाकर ही इस संसार में भेजा है, कि मैंने तुम्हें सुखी बनाकर इस संसार में भेजा है। हमारा मूल स्वभाव है सुख, और दुख हमारा व्यवहार है। सुख हमारे भीतर ही होता है और दुख हम बाहर से लाते हैं। अध्यात्म द्वारा ही हम भीतर के सुख को समझ सकते हैं। दो लाइनें इसी संदर्भ में गुनगुनाना चाहूंगी। जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, जब एक किरण की आशा भी आती है नहीं नजर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जगत के पालनहारे से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हरिओम। यही आकर हमारी तलाश पूरी होती है, यही आकर हमारी तलाश पूरी होती है। आध्यात्मिक रुझान से न सिर्फ व्यक्ति के का चरित्र सुदृढ़ होता है, बल्कि उसके अंदर मानवता के गुणों का विकास होता है। आध्यात्मिकता के बिना व्यक्ति अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं पहचान पाता, भटक जाता है, और पास भौतिक साधन कितने ही हो जाए उसका दुख नहीं मिटता। इसके लिए इस तथाकथित युवा पीढ़ी को आधुनिक बनाते हुए एक सुसंस्कृत राष्ट्र के निर्माण में हम सफल हो पाएंगे, हम आधुनिकता को हमारे संस्कारों एवं प्रचलित संस्कृति के दायरे में रहकर सामंजस्य स्थापित कर हमारे देश, समाज एवं परिवार को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को सॉरी और थैंक यू कहूंगी। सॉरी इसलिए कि कुछ अपनी बात कहने की कोशिश में कोई भूल चूक हो गई हो तो, और थैंक यू इसलिए कि चंदा बेन ने, मीना गुप्ता जी ने और डॉक्टर सविता बेन ने और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। सच कहूँ अक्सर यह कहा जाता है कि रिश्तों में सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं होती, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि वास्तविकता में इन शब्दों के उपयोग से रिश्तों की उम्र बढ़ जाती है। कितना अनमोल है आपका यह ग्रुप, कितना अनमोल है आपका यह ग्रुप। रिश्ते नहीं जानते कोई किसी के, फिर भी सब अपने लगते हैं। मैं आपके मित्र हूँ, ये मेरा भाग्य है, पर आप सब मेरे मित्र हो, यह मेरा सौभाग्य है। जय हिंद, जय लायनवाद, ओम शांति।
बहुत सुंदर रेनू बहन ने हम सबको ये याद दिला दिया कि ये सारा संसार ही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए मैं आपके लिए दो शब्द कहूंगी। आपकी सोच में आत्म सम्मान की महक है, आपके इरादों में हौसले की मिठास है, आपकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, इसलिए आपकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है जो दूसरों को खुशबू देने वाला। ऐसी सेवारत बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिसकी आप सबको बहुत समय से इंतजार थी। आप लोग शांतिवन में आए होंगे, जरूर ढूंढा होगा। हमारी उषा बहन दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हम सब महिला विंग के भाई बहन, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। दिल्ली से दौड़ती हुई आदरणीय उषा बहन जी हम सबके बीच में आए हैं, हम सबकी मनोकामना पूरी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहन से तो आप सब परिचित ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। उषा बहन जी का जन्म अफ्रीका में हुआ। आप छोटी सी उम्र में ही संस्था के संपर्क में आए। 1980 में जब आपकी आयु 20 वर्ष की थी तो आपने संपूर्ण जीवन अपना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में समर्पित कर दिया। 1985 में जब यूएनओ के द्वारा यूथ ईयर मनाया गया तो कई स्थानों से पदयात्राएं निकली, 6 स्थानों से पदयात्राएं निकली जो दिल्ली में पहुंची थी, तो मुंबई से दिल्ली तक की युवा एकता पदयात्रा का आपने कुशल संचालन किया। इस दौरान अनेक गांवों कस्बों में आपने आध्यात्मिक संदेश पहुंचाया। आपने देश विदेश में अनेक स्थानों पर जाकर बाबा का ये संदेश दिया। सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, राजयोग शिविर करा के अनेक आत्माओं को आपने लाभान्वित किया है। और अभी विशेष रूप से कुछ वर्षों से रामायण गीता के गुड़ रहस्यों से भी आपने अनेक आत्माओं को एक नई दिशा, एक नया चिंतन दिया है। इसलिए मैं आपके लिए दो शब्द कहूंगी। अपनी वाणी वीणा से ज्ञान का नित्य अलग जगाती हैं आप, अपनी वाणी वीणा से ज्ञान का नित्य अलग जगाती हैं आप, अपनी सेवा से अनेक आत्माओं को स्वदर्शन कराती हैं आप, तप त्याग समर्पण से, तप त्याग समर्पण से जीवन महान बनाया है, राजयोग प्रशिक्षण से अनेकों का जीवन आपने महकाया है, अनेकों का जीवन आपने महकाया है। सुनेंगे आदरणीय उषा बहन जी।
ओम शांति। गुड इवनिंग। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता, सर्व का दुख हर करके सुख प्रदान करने वाले परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे महान वक्तागण तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बहुत सुंदर विषय पर हम सुंदर विचार सुन रहे हैं और जो भी बातें अब तक आपने सुनी, एक छोटी सी एक्सरसाइज कराना चाहती हूं मैं आपको कि दो घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे व्यक्ति को आप विजुअलाइज करिए कि जिसके अंदर ये बैलेंस है आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का, ऐसा कोई चेहरा आप अपने सामने ले आइए दूसरी एक्सरसाइज कि ऐसा समाज आप देखिए कि जिस समाज के अंदर भी ये संतुलन हो आध्यात्मिकता और आधुनिकता का, उस समाज को देखिए, उस सोसाइटी को देखते हुए क्या दिखाई देता है। ये एक्सरसाइज हम सभी ने की और मैं समझती हूं कि इस बात को आप सभी ने बहुत स्पष्ट रीति से देखा होगा कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता का जहां संतुलन है वहां किसी भी प्रकार की असभ्यता उस व्यक्ति के अंदर कोई छिछोरापन आपको दिखाई नहीं दिया होगा। बहुत सुंदर घटना याद आती है कि एक बार स्वामी विवेकानंद लंदन में एक बस स्टॉप पर खड़े थे और एक कपल आता है वहां पर और उनको देखते हुए आपस में बात करते हैं। ये भारत के लोगों को कपड़े पहनने की भी सभ्यता नहीं है, कैसा एक कपड़ा लपेट लिया है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए उनके सामने देखते हुए और कहने लगे कि आपके देश में शायद कपड़े से व्यक्ति की सभ्यता देखी जाती है, हमारे देश में व्यक्ति के चरित्र से उसकी सभ्यता पहचानी जाती है। ये तो हम सभी ने अपने उस विजुअलाइजेशन में भी देखा होगा कि जहां आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बैलेंस हो वहां सभ्यता उसके चरित्र में स्पष्ट नजर आती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कोई छिछोरापन नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत सुंदर सभ्यता अर्थात वो वैल्यूज के साथ उस जीवन का चरित्र नजर आता है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? बहुत सुंदर हमारी बहन ने बताया कि धर्म नहीं है। आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी ने भी बताया आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भी यही सवाल भगवान से पूछा कि अध्यात्म क्या है, मैं जानना चाहता हूं। उस समय भगवान ने इतना सुंदर जवाब दिया सटीक कि अध्यात्म का मतलब है, अध्यात्म शब्द को अगर अलग करेंगे तो अध्यात्म का मतलब है अध्ययन द्वारा। अध्ययन द्वारा जब आत्मा अपने संपूर्ण इंद्रियों के ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करती है और माया के अधिपत्य से निकल आती है, उसका नाम है अध्यात्म। और आधुनिकता का मतलब भी शायद यही कि एक वैल्यूज पूर्ण जीवन हो। आज व्यक्ति हर रीति से एडवांस होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एडवांस विचार भी है उसके, एडवांस्ड उसका रहन सहन हो गया है और उसके व्यवहार में भी वो कुशलता आ जाती है। जब मैंने आपको ये कहा कि उस समाज को विजुअलाइज करिए तो आपने क्या देखा, किस प्रकार के समाज को विजुअलाइज किया? हमारे इस भारत में देवी देवताएं होकर के गए हैं और उसके अंदर भी अगर देखें तो एक आधुनिकता भी दिखाई देती है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जीवन के अंदर। और आध्यात्मिकता दोनों ही दिखाई देती, आभूषणों से इतने श्रृंगार किए हुए, उनके ड्रेस में वो सभ्यता दिखाई देती है। भले आजकल की दुनिया की तरह फैशन डिजाइनर वाले ड्रेसेस नहीं हो, कई लोग समझते हैं आधुनिकता का मतलब के डिजाइनर फैशन के ड्रेसेस पहनना और समाज के अंदर अपना रुतबा दिखाना, लेकिन नहीं, सभ्यता। क्योंकि आज मनुष्य डिजाइनर ड्रेसेस पहन करके कोई पार्टी में भी जाता है, उसके बाद वो हमेशा यही अपेक्षा में रहता है कि कोई मुझे कहे यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और अगर किसी ने नहीं कहा उस इंतजार के बाद भी, तो आखिर रहा नहीं जाता है तो पूछ ही लेते हैं कैसे लग रहे हैं। और अगर सामने वाले ने ये कह दिया बहुत सुंदर है, लेकिन दूसरा कोई कलर नहीं था क्या? ये कलर जो है ना आपको सूट नहीं कर रहा है, उसके बाद उस चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। और इतना महंगा ड्रेस खरीदा, किसी ने ऐसी कमेंट दे दी, कब घर जाएं, कब उस ड्रेस को निकालें और दोबारा उस ड्रेस को पहनना नहीं है, संकल्प कर लेते हैं। माना हमारा जीवन आज की आधुनिक दुनिया में दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करती है। दूसरा अगर कहे कि हाँ मैं बहुत सुंदर लग रही हूं तो मैं बहुत खुश हूं, और अगर किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया तो उसके बाद मेरी खुशी गायब हो जाती है। क्या ये आधुनिक जीवन है? और इसीलिए कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण के ड्रेसेस को अगर देखे तो बहुत सुंदर, उनको किसी के ओपिनियन पर अपने लाइफस्टाइल को डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ यहां आप आए, आप में से कई लोग पहले भी आ गए होंगे और कई लोग पहली बार आए होंगे, आपको यहां इन दोनों चीजों का प्रैक्टिकल समन्वय दिखाई देता है। आधुनिकता भी है और आध्यात्मिकता भी है, दोनों का बैलेंस बहुत सुंदर तरीके से इस समाज के अंदर किया गया है। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि हाँ त्याग करना, खाली भक्ति करना, ये नहीं है। आज अगर मैं कहूँ कि भाई आध्यात्मिक है, सोफा सब निकाल दो, सब नीचे बैठना शुरू करो, तो शायद आप दूसरी बार यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई को घुटने की प्रॉब्लम होती है, नीचे बैठना इतना असुविधाजनक महसूस होता है, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, तो ध्यान कहाँ रहेगा? लेक्चर पर रहेगा, मेडिटेशन में रहेगा या घुटनों में जाएगा, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, ये कब पूरा होने वाला है, और शायद दूसरे सेशन में आप उपस्थित भी न हो। इसीलिए कहा कि साधनों का प्रयोग करना बुरी बात नहीं है, साधनों का प्रयोग जरूर करो, लेकिन एक सकारात्मक भावना के साथ जब उसका प्रयोग किया जाता है तो दूसरों को भी सुख मिलता है, खुद को भी सुख मिलता है। और यहाँ इसीलिए ये बात आपने प्रैक्टिकल देखी होंगी कि साइंस की हर चीज, जो भी आधुनिक से आधुनिक चीजें हैं, उसका प्रयोग यहाँ किया गया है, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक वातावरण भी एक ऐसा महसूस होता है कि जब इस वातावरण के अंदर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे चार्ज हो गए, बैटरी चार्ज होने लगी है, ये है संतुलन। और इसीलिए गीता में जहाँ हर चैप्टर योग है, आज लोगों ने योग का मतलब बहुत सीमित कर दिया कि योगा माना एक्सरसाइज, योग को योगा कर दिया, और योगा माना एक्सरसाइज और आसनस, उसके आगे कुछ नहीं। परंतु गीता का हर चैप्टर अगर योग है, हर अध्याय अगर योग है, और वहां पर भगवान ने कहीं भी अर्जुन को आसन या एक्सरसाइज नहीं सिखाई और योग का मतलब बताया कि योग मतलब स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिनिंग। जब हम अपने आप को सुसंस्कृत करते हैं एक समझ के साथ, विज्ञान माना समझ, तो समझ के साथ हमने अपने आप को सुसंस्कृत किया। अपनी इंद्रियों का दमन नहीं करना है, अपने इंद्रियों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन समझ से उसके ऊपर अधिपत्य को प्राप्त करना, यही आध्यात्म और यही योग है। और इसीलिए गीता को अगर मैं देखती हूँ तो भगवान ने अर्जुन को विशेष, सारी गीता को अगर समराइज करे तो तीन योग सिखाए। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। ये तीनों का बैलेंस यही राजयोग है, और इसीलिए आप सभी यहाँ आए हैं राजयोग सीखने के लिए, यानी ये तीनों सीखना है। एक जगह पर अर्जुन ने सवाल किया भगवान से, क्या मुझे ज्ञान योग करना है या कर्म योग करना है, दोनों में से कौन सा रास्ता मैं चुनूं? भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब कर्म में ज्ञान को शामिल कर दो, कर्म में समझ को अप्लाई करो, स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना शुरू करो, वही तो कर्म योग है, वही ज्ञान योग है। ज्ञान योग कर्म योग हमें संन्यास नहीं सिखाता है, चीज वस्तुओं का संन्यास करना नहीं सिखाता है कि आप जिम्मेवारियों को छोड़ दो, आप कर्तव्य को छोड़ दो। नहीं, कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं दी, हर बार कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दी। कि जब स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या स्पिरिचुअल विजडम को कर्म में ट्रांसलेट करते हैं तो इतने सुंदर कर्म कि जहां बुरी वृत्तियों का सन्यास अपने आप होने लगता है, बुराइयां स्वतः समाप्त होने लगती है और जीवन के अंदर भावनाएं शुद्ध, सकारात्मक और पवित्र होने लगती। यही भक्ति योग है कि जहां भावनाएं अति उच्च हो, भक्ति माना क्या? श्रेष्ठ भाव ईश्वर के प्रति। जिसका ईश्वर के प्रति श्रेष्ठ भाव है, उसका मनुष्य के प्रति, इंसानों के प्रति कैसा भाव होगा? खाली भगवान के प्रति श्रेष्ठ भाव रखने की बात नहीं है, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव होता है। तो इसीलिए भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, यही दोनों का बैलेंस करना सिखाता है। इसलिए कहा योगा मीन्स बैलेंस। योगा मीन्स बैलेंस, बहुत सुंदर लिस्ट हमने देखी किस किस बातों में बैलेंस करना है। लेकिन सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं तो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, जीवन के अंदर कर्म और योग का बैलेंस। जब ये बैलेंस व्यक्ति सीख लेता है तो आधुनिकता के साथ साथ अध्यात्म विचारों को लेकर के चलना बहुत आसान हो जाता है। आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। इसीलिए कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिंस। तो एक समझ है, जहां हम अपने विवेक को लेकर के चलते हैं, अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, कर्म में उसको अप्लाई करते हैं, तो आधुनिकता और आध्यात्मिकता से ही जीवन संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। इसीलिए आज बहुत सुंदर ये विषय हमारे सामने आया है कि दोनों को लेकर चलना है, नहीं तो जीवन इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। या तो सिर्फ आधुनिकता माना गैजेट्स, साधन सुविधाएं यही रहेगा जिससे व्यक्ति तंग हो जाता है, और या तो फिर एकदम सिर्फ धार्मिक होने लगेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो इम्बैलेंस कहीं भी अच्छा नहीं है। बैलेंस जब है तो जीवन पूर्ण होता है। बहुत सुंदर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार एक महात्मा जी, एक सन्यासी राजा जनक के पास जाता है और राजा जनक से पूछता है कि हे राजन, मैंने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अपने मन को विचलित कभी कभी महसूस करता हूँ, मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मैं कैसे मानूं कि आप इतने भौतिक साधनों के बीच में रहते हुए आप विदेही है, कैसे मैं मानूं? राजा जनक ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने कि इतने सुख सुविधा के साधनों के बीच में रहते हुए कैसे मैं अपने मन को स्थिर कर सकता हूँ, आध्यात्म के साथ में चल सकता हूँ। लेकिन राजा ने कहा कि तब तक मैं थोड़ा मेरा कारोबार है उसको पूर्ण कर लेता हूँ, उसके साथ बैठकर आपके साथ ज्ञान चर्चा करने का बड़ा आनंद आएगा, लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? इसलिए आप ऐसा करिए कि मेरे महल का अवलोकन करके आइए, बहुत सुंदर कारीगरी है, महल देख करके आइए। सन्यासी ने कहा ठीक है, और राजा ने जाते हुए जब सन्यासी जा रहा था तो कहा, एक मिनट ठहरो, एक काम करो कि जिस एरिया में सारी कारीगरी और बहुत सुंदर पेंटिंग्स आदि है, लेकिन वहां अभी तक लाइट का कनेक्शन नहीं है। आप एक दीपक लेकर के चले जाओ ताकि आप अच्छी तरह से उस कारीगरी को देख सको। सन्यासी ने कहा ठीक है। जैसे ही जाने लगा तो राजा ने कहा कि एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जिस तरफ ये सारी कारीगरी है उस तरफ खिड़की दरवाजे अभी तक लगे नहीं हैं और वही हवा की दिशा भी है, इसलिए दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप इतनी सुंदर कार्विंग आदि देख नहीं पाएंगे। सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, और चल पड़ा। एक घंटे के बाद सारा महल का अवलोकन करते हुए वापस आ गया। तब तक राजा भी अपने कारोबार से फ्री होकर के आ गए। राजा ने पूछा आपने महल देखा? कहा हाँ देखा। कैसा लगा? बहुत सुंदर। तब राजा ने पूछा ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था ना, कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान दीपक पर था। राजा ने कहा कि यही सीक्रेट है कि इन भौतिक साधनों के बीच में रहते हुए, आधुनिक संसाधनों के बीच में रहते हुए, मैं भी अपना ध्यान उस आत्मरूपी दीपक पर रखता हूँ कि जो बुझ नहीं जाना चाहिए। ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को जब हम डेवलप करेंगे अपने अंदर, तब आप देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से आप डिटैच भी रह सकते हैं और अपना कारोबार भी बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं, यानी आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करते हुए अपने जीवन को जी सकते हैं। आत्मरूपी दीपक पर ध्यान रखो, सोल कॉन्शियसनेस बनो। यही विधि है कि जितना हम सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करते रहेंगे तो कर्म के अंदर कुशलता सहज स्वाभाविक रीति से आ जाएंगी, व्यवहार कुशलता भी बहुत आसानी से आ जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको यही शुभ भावना और दुआएं देती हूँ कि आप लोग यहाँ से अपने जीवन के अंदर ये सुंदर बैलेंस, ये कला सीख करके जाइए तो शायद आपका जीवन बहुत सुंदर, अनेकों के लिए आदर्श, प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। जो विजुअलाइजेशन किया था जिस व्यक्ति के विषय में, शायद वो व्यक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में आप ही हो जाएंगे और आप अपना घर परिवार को वैसा ही जो विजुअलाइज समाज के लिए आपने किया था, वो शायद आपका घर वैसा ही हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
उषा बहन ने हम सबको राजा जनक बनने की प्रेरणा दी। सभी बनेंगे राजा जनक, क्योंकि अपने घर के तो हम सब राजा हैं, तो हम सबको राजा जनक बनने की आपने प्रेरणा दी। आपने बताया नॉवल्टी भी हो, नाइस भी हो, वायरलेस भी हो तो वाइसलेस भी बने, स्टाइलिश भी हो तो स्माइलिंग भी हम जरूर बने। ऐसा बैलेंस रख करके अगर हम अपने जीवन में चलेंगे तो हमारा जीवन जरूर ब्लिसफुल बन जाएगा। यही गीता का एक श्लोक भी मुझे याद आ रहा था जब आपने गीता की बात दी। गीता में एक और भी बहुत सुंदर श्लोक है जो हमें संतुलन बताता है, जिसमें कहा कि हे अर्जुन, ये योग ना ज्यादा खाने वाला कर सकता है, ना कम खाने वाला कर सकता है, ना ज्यादा सोने वाला कर सकता है और ना कम सोने वाला कर सकता है। जीवन के अंदर कैसे हमको हर क्षेत्र के अंदर अपना बैलेंस बना के चलना है, ऐसे गीता के सुंदर दृष्टांत आपने हमें दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ राजस्थान से आई स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चा बीजेपी की बहन मधु शर्मा जी को। आप बहुत सेवाओं में बहुत बहुत आगे हैं, बहुत बड़ा बायोडेटा है, उसमें से मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी। आप गरीब व असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सेवाएं करते हैं, बेरोजगारों को उनकी योग्यता व अनुभव अनुसार रोजगार प्रदान कराना, परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से उत्पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय दिलाना, टूटते परिवारों को जोड़ने का सेवा आप करके अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने वाली हैं, विशिष्ट पर्याप्त निर्धन महिलाओं को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, राजस्थान व अन्य राज्यों में भाजपा के सिद्धांत सौंपे गए दायित्वों का आप कुशल संचालन करती हैं। आपके लिए मैं दो शब्द कहूंगी, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, कांटों से मत घबराना मेरी बहनों, क्योंकि कांटों में ही तो एक गुलाब का फूल हमारी मधु बहन की तरह मुस्कुराता है, मुस्कुराता है आदरणीय मधु बहन।
तीन दिवसीय अखिल भारतीय महिला शिविर के समापन सत्र के आज की मुख्य अतिथि बहन मनन चतुर्वेदी जी, हमारे महिला विंग की अखिल भारतीय अध्यक्ष ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी, शीला जी, सम्मानित मंच, वास्तव में जब मेरी गाड़ी इस प्रांगण के अंदर जैसे ही घुसी तो लगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर मैं आ गई हूं और एक अजीब सी शांति मेरे को मिली, क्योंकि मैं दो तीन बार ही इन शिविरों में आई हूं। अभी पहले भी मेरे को जयपुर के अंदर बुलाया था और इतना अच्छा काम हमारी दीदियां हमारे को आधुनिक युग के अंदर हम आध्यात्मिक कैसे बने और किस तरीके से अपने मन की शांति, क्योंकि आज के जो हमारी दौड़ भाग की जो जिंदगी है और जिसमें हम भागे चले जा रहे हैं, हमारे को सारी आधुनिक चीजें प्राप्त है किंतु एक शांति नहीं मिलती है, और शांति जब मिलती है तो हमें अष्टांग योग और साधना करेंगे तो इसी से ही हम परमात्मा की ओर जाएंगे और परमात्मा से ही हमारे पूरे सर्वांगीण विकास होता है, और ये सृष्टि का निर्माण भी मेरे ख्याल में अध्यात्म के ऊपर ही टिका हुआ है। नहीं तो आज अगर हम आध्यात्मिक नीड हैं और आप जैसे हमारे को अध्यात्म सिखाने वाले नहीं रहे तो समाज भी नहीं रहेगा। आज परिवार टूट रहे हैं, यह भारत की संस्कृति जीवित है, तो वो अध्यात्म की ओर जाएंगे। हम अगर मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे, तो साधना से एक हमारे को ब्रह्म सत्य की प्राप्ति होती है, हमारे को लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये देख लो कि जो भी पूजा पाठ भी करता है या कोई मेडिटेशन करता है या किसी के घर में ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो आपको कहीं भी कोई कुत्ते के अगर चिल्लाएगा या कोई मानव का कोई कहराएगा तो अपन दौड़ करके देखेंगे, अपना मन जाएगा वहां पर कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सोच हमारे अध्यात्म से आती है और अध्यात्म को लेकर के, क्योंकि आज का मॉडर्न समय है किंतु नारी सशक्त है, नारी ही सृष्टि की निर्माता है। ये नारियों का ये शिविर आयोजित तीन दिवसीय चल रहा है, तो इसमें मैं अपनी बहनों को ही कुछ इस तरीके का कहना चाहती हूँ कि आप सब बहनें सहन शक्ति से और अपने अध्यात्म से अपने परिवार को भी बचा सकती हैं, अपने समाज की भी रचना कर सकती हैं और सृष्टि के निर्माता तो आप हैं ही हैं, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो आप उसको संस्कार देती हैं, और संस्कार एक कर्म के माध्यम से ही दिया जाता है। जैसे कि दीदी ने कहा है कि हर चीज का बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा, आधुनिकता और अध्यात्म से बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर कोई महिला बाहर काम कर रही है नारी, तो उसको परिवार के साथ बैलेंस सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ेगा। हम सामूहिक रूप से रह रहे हैं तो हमें सामंजस्य बिठा करके करना पड़ेगा, और आज का जो समय आया है तो हमें बच्चों के साथ भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और वो कब कर सकते हम कि जब हमारे में अध्यात्म जीवित हो, और साधना अगर हम करेंगे तो उससे सहन शक्ति बढ़ती है, एक सोचने की क्षमता बढ़ती है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जैसे दीदी ने बताया कि कर्म से एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और भारतीय संस्कृति में ही है कि संस्कार और संस्कृति को जीवित रखने वाले हम सभी हैं, और आप लोगों में कुछ संस्कार हैं, इसलिए आज आप इस प्रांगण के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ सोचते हैं अध्यात्म के बारे में। तभी हम लोग, मैं ऐसा भी नहीं है कि आप कोई मॉडर्न नहीं है, हमारे को नई टेक्नोलॉजी अपनानी है, किंतु हमारे संस्कार और संस्कृति को भी हमारे को जीवित रखना है। और हम सभी लोग, और उसमें नारी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है संस्कार और संस्कृति को जीवित रखने में, क्योंकि वही तो एक धुरी की तरह पूरे समाज के अंदर काम कर रही है, पूरे परिवार के अंदर काम कर रही है, और पूरे राष्ट्र के अंदर काम कर रही है। और जिस तरीके से मैं बताऊं कि हमारी मुख्यमंत्री भी नारी है, और नारी के तरह वो किस तरीके से पूरे राजस्थान का संचालन कर रही है, तो नारी ने तो पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, पूरे देश का निर्माण किया है, और अंतर्राष्ट्रीय युग के अंदर भी नारी के ही संस्कार आज, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, वो नारी के ही देन है। तो इसमें स्त्री का बहुत बड़ा रोल पूरे समाज के अंदर है, और नारी सशक्त है। और आधुनिक युग में मैं बस यही कहूंगी कि अपनी सहन शक्ति से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र का ऐसा निर्माण करें, और इस तरीके का व्यक्तित्व दें कि जो अंतर्राष्ट्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अपनी तूती बजा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी पूरे अध्यात्म का पूरे क्षेत्र के अंदर अपना प्रचार करते रहें। दीदी का इतना अच्छा यहाँ का आयोजन मेरे को लगा है कि बार बार आने का मन करता है, और वास्तव में मैं कह रही हूँ ना कि खाना भी ये बनाते हैं तो उसमें एक भाव अध्यात्मी होता है कि कोई भी चीज, महिला अगर कोई भी चीज बनाएगी तो अगर आपने अच्छे मन से बनाया, ये सोचा कि हमारे घर नारायण आए, जिस तरीके की आप दीदी लोग सोचती हैं, तो उस खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है, उसमें एक भाव उत्पन्न हो जाता है। मैंने लड्डू भी आपका खाया है बना हुआ, बहुत टेस्टी लड्डू लगा मेरे को, अभी तक याद आ रहा है। तो उस भाव को लेकर के आप पूरे समाज को बहुत कुछ दे सकती हैं। सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय हिंद, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि मेरे को 7 मिनट मिले हैं, अपना थोड़ा सा मैं इसमें समग्र को रखने की मैंने कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद मधु बहन ने अपने अनुभव की बहुत सुंदर बातें बताई। आपने कहा मुझे आके शांति मिली फिर आए। मुझे एक बात याद आ रही थी, हमारे इस विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा से जब हम लोग आबू से छुट्टी लेकर जाते, विदाई लेकर अपने लौकिक परिवार की ओर जाते थे, तो बाबा हम बच्चों को प्रसाद देते और साथ साथ कहते थे इस टोली का प्रसाद का नाम है गो सोन कम सोन। अर्थात जल्दी जाओ और वापस जल्दी आओ। तो हमारा आपको बहुत निमंत्रण है, ये आपका घर है, आप फिर से वापस यहाँ आएंगे और अनेकों को तैयार करके लेके आएंगे। घर को भी संभालना है लेकिन साथ साथ अनेक आत्माओं को अपने समान बना के, योगी बनाकर, पवित्र बनाकर उनको वापस भी लाना है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय बहन मनन चतुर्वेदी जी को। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए किया और दिल्ली से आपने फैशन डिजाइन में डिप्लोमा भी किया। आप मनन सिने आर्ट्स की प्रोड्यूसर व डायरेक्टर हैं। आपके निर्देशन में अनेक फिल्म व स्टेज प्ले हुए हैं। आप एक पेंटर भी हैं। आपकी पेंटिंग की अनेक स्थानों पर एग्जीबिशन भी रखी गई। आपको अनेक अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जैसे वुमेन रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड, द हार्ट ऑफ गोल्ड 95 FM तड़का, बड़े दिलवाला अवार्ड 2013, आलोक भारती राजस्थान भूषण अवार्ड। आप सुमन संस्थान के फाउंडर भी हैं और वर्तमान समय आप राजस्थान बाल अधिकार व सुरक्षा समिति की अध्यक्षा हैं। मैं मनन चतुर्वेदी बहन को अनुरोध करती हूँ आप आकर के अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखेंगी। मनन बहन,
फूल कोई खिला सकता है? मैं तो नहीं खिला सकती। फूल खिलता है अपनी ही स्वाभाविक गति से, उसे कोई खिला नहीं सकता। उसका एक पत्ता या एक पत्ती भी कोई जबरदस्ती खिला नहीं सकता। जब एक फूल अस्वाभाविक तरीके से हम खिला नहीं सकते, तो हम कौन सी दौड़ में और कौन से अहम में भाग रहे हैं? चाहते हैं सब कुछ पाना, हम पा नहीं सकते। जिंदगी में हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, मगर एक्सेप्ट करने की ताकत को हम खोते जा रहे हैं और यहीं से बैलेंस खत्म होता है, खत्म होने की शुरुआत होती है। एक्सपेक्टेशन, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, लेकिन तब क्या करेंगे? जब ठंड आ गई तो एक्सेप्ट ही तो करेंगे। अब हम ठंड को कैसे भगा सकते, हम सूरज को कैसे हटा सकते? तो चीजों की जो स्वाभाविक गति है वो तो रहेगी। जीतता वो है जो गति को समझकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ना तो वक्त से आगे और ना वक्त से पीछे चलता हो। जीतता वो है जो ताल से ताल मिलाकर चलता हो। अभी आपको बताया कि मेरी एक संस्था भी, संस्था किस चीज की वो नहीं बताया, क्या करते हैं हम वो नहीं बताया। संस्था में मेरे 127 बच्चे हैं और मैं उनकी माँ हूँ। अब ये फक्र की बात नहीं है कि मैं उन 127 बच्चों की माँ हूँ, ये थोड़ी सी दर्दनाक बात है कि आज भी हम आधुनिकता के नाम पर कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं आपको इनडायरेक्ट लेकिन डायरेक्ट बोलती हूँ। बहुत से लोग आधुनिकता का गलत मतलब समझते हुए न जाने कौन सी जिंदगी में चले गए, जिसका परिणाम जब उन्हें फेस करने की ताकत नहीं रहती तो उन बच्चों को कभी डस्टबिन में, कभी ट्रेन के टॉयलेट में, कभी खाली प्लॉट पर, और ऐसे छोड़ देते हैं। उनको हम घर लेकर आते हैं और हम उनकी माँ हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि न जाने कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जिनकी माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है, और हम विश्वनाथ के देश में रहते हैं। मुद्दा ये, विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं होता, ऐसा कहते हैं हम। ये वैसा ही है कि आसमान पर मेरी नजर है लेकिन पांव तो मेरे दलदल में है। गति बढ़ाना गलत नहीं है लेकिन गति के साथ अपने व्हीकल को मेंटेन करके, बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी। छोटी सी बात है, बच्चा पैदा होता है 9 महीने का ही समय निश्चित है। पहले होता है तो टेंशन, बाद में होता है तो टेंशन, निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मांड, हम दूर क्यों जाते हैं? पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखते हैं, सभी ग्रह उपग्रह एक गति से ही तो चलते, वो गति इतनी तीव्र भी है, इतनी तेज भी है कि हम घूम रहे हैं इस वक्त, ये आप है पृथ्वी के चारों तरफ हम चिपके पड़े हुए गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, लेकिन आपके उसके हिलने से आपका बाल तक नहीं हिल रहा। ये गति की बैलेंसिंग ही तो है। सारे ग्रह उपग्रह सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से कनेक्ट होकर चल रहा है स्वाभाविक तरीके से, और एक शक्ति भी पैदा करता है निरंतर। यही तो है बैलेंस। गायक बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन माँ की लोरी की होड़ नहीं होती। कितना भी अच्छा गाना हो, रात को मेरे सर पे चलाओ, मैं सो नहीं सकती। भजन जो दिल को छू जाते हैं उनमें सुरीला कितना है वो मुद्दा नहीं होता, उसमें सहजता सरलता कितनी होती है। वहाँ संगीत की उपाधियां काम नहीं आती, वहाँ भगवान से अपने अंदर का भाव कितना जुड़ा हुआ है ये बात काम आती है। मैं गायक नहीं हूँ लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बात को महसूस करूँ, क्योंकि आध्यात्म तब होता है जब बिना कोई प्रार्थना करे आप अंदर से लेके बाहर तक क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तब आध्यात्म का बीज फटता है और दृष्ट बनता है। मैं बोलना चाहूंगी, हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये सफलता तब मिल सकती थी आपको जब आप अपने दिमाग का प्रोटोकॉल या अपनी बुद्धि को थोड़ी देर लॉक करके मेरे साथ गा पाते तो आध्यात्म पैदा हो सकता था, क्योंकि मेरे लिखे या मेरे सोचे भाषण नहीं है, ये बात है जो मैं आपसे करना चाहती। झूमने से आप रोक नहीं सकते अगर मंदिर के भजन आपके दिल में उतरते हैं तो, आप अपने पैरों को थिरकने से नहीं रोक सकते अगर आपके दिल में वो भजन वो आध्यात्म सीधा उतरता है तो। दिमाग काम नहीं करता उस वक्त, इंसान थकता नहीं है उस वक्त, उसमें एक ऊर्जा अंदर से फूटती है जिससे वो निरंतर चलता रहता है। और ये मैंने कब महसूस किया, आपने बताया कि मैं एक पेंटर हूँ, हाँ मैं पेंटर हूँ। अपने उन बच्चों को पालने के लिए मैं सरकार से सहायता नहीं लेती, 17 साल से यही कर रही हूँ। एक बच्चे को देखा था मैंने फैशन डिजाइनिंग करके जब लौट रही थी, कचरे के ढेर में से वो कुछ ढूंढ के खा रही थी वो बच्ची, एक कपड़ा उसके तन पे नहीं था। मैं फैशन की बात कहाँ से करूँ, फैशन डिजाइनिंग में टॉपर थी मैं, मुझे लंदन के लिए स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका में मुझे जॉब मिला, लेकिन मुझे लगता है सबसे खूबसूरत आध्यात्म का पल था जब मैं जयपुर दिल्ली से आई और बहुत खुश थी मैं कि मुझे लंदन के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। और मेरी बस जब सिंधी के बस स्टैंड के अंदर एंटर करती है तो एक छोटी सी बच्ची निर्वस्त्र कुछ ढूंढ कर खा रही, और वहीं पर कहीं सुअर के बच्चे, बस में बहुत लोग थे लेकिन वही आध्यात्म मेरे अंदर जागा और मैंने फैशन डिजाइनिंग को छोड़ना सोचा। मुझे लगा फैशन डिजाइनिंग कपड़े डिजाइनिंग हाउ कैन आई डू इट, फॉर हुम आई एम गोइंग टू डिजाइन द गारमेंट्स व्हेन पीपल डोंट हैव क्लोथ्स टू वियर, एटलीस्ट मैं कब फैशन डिजाइनिंग करूं, क्यों करूं जब कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, तो मैं क्यों ना कपड़े पहनाऊं। वो है अध्यात्म। ये अध्यात्म नहीं है जिसमें हम सिर्फ खुद को साधें, खुद के लिए सब कुछ साधे, हम खुद को साध लें लेकिन औरों के लिए साधे, औरों को साधने के लिए साधे। मैंने खुद को साध लिया, तीर ले लिया, कमान ले लिया और चला दिया, अब मकसद ही नहीं पता, चलूं कहां। खुद को साधने का मतलब सिर्फ खुद की शांति नहीं है, ये स्वार्थ की परिभाषा है। मैं कहना चाहती हूं, अभी बैठे बैठे दो लाइनें दिमाग में आई ऐसे ही अंदर से, यहां खुद से मिली मैं खुद तो खुदाई मिल गई, खुद से मिली मैं खुद तो मुझे खुदाई मिल गई, और खुदा से मैं मिली तो मुझे खुद से ही रिहाई मिल गई। मतलब इसका यह है कि हर चीज की प्रॉब्लम, चाहे वो मॉडर्निटी की हो या स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्या है, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, स्पिरिचुअल क्या है, जब हम मेरे नजर में जब इंसान को सुकून मिले, खुशी नहीं, आनंद नहीं, जब इंसान को सुकून मिले, अंदर की संतुष्टि मिले और अंदर से प्यार का झरना फूटे, मेरे ही बच्चा हो तो ही दूध आए, दूसरे की तकलीफ से भी मेरी छाती में दूध भर जाए, ये आध्यात्म है। हमें समझना होगा, आध्यात्म की गंगा को मैं उस दिन मांग लूंगी जिस दिन यहां पर जितनी भी महिलाएं, वैसे तो मैं कोई नहीं होती मान्यता देने वाली, एक साधारण सा इंसान हूं, लेकिन फिर भी जिस दिन एक भी बच्चा सड़क पर नहीं होगा और सबके दिलों में मां का दिल होगा और सब माओं के दिल में दूसरों के बच्चे या सड़क पर जी रहे बच्चों के लिए भी मां का दिल होगा, उसी को आध्यात्म मानूंगी। जब स्वयं का त्याग होगा, स्वयं के अंदर से जो बीज फूटता है उस स्वार्थ का त्याग होगा, उसको आध्यात्म कहते हैं। एक किलो भिंडी में हम एक काणी ढूंढते हैं और बाहर कर देते हैं, छोटा सा 125 गज का 100 गज का प्लॉट, उसमें बगीचा लगाने के बाद अगर एक जंगली घास, जिसे हम कहते हैं जंगली, किसको कहते हैं, कोई भगवान नहीं बनाई है, सारी चीजें ही अमृत है, तुमको नहीं पसंद इसलिए तुमने उसको जंगली बनाया भी और बताया भी और उखाड़ भी दिया और फेंक भी दिया। जिस दिन हम स्वयं का त्याग कर देंगे, स्वार्थ का त्याग कर देंगे, जिस दिन हम अपने आप को सब में मिला देंगे और सबको अपने आप में महसूस कर लेंगे, जिस दिन ये दिल की ज्यादा सुनेंगे और दिमाग को उसके लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल करेंगे, मुझे लगता है उस दिन आध्यात्म जागेगा और सबको अपनी आत्मा के अंदर का पता है। लेकिन वक्त की मट्टी हमने उस पर इतनी चढ़ा ली ना कि हम यहाँ वहाँ सुकून ढूंढते हैं, बाहर नहीं है सुकून, अंदर है सुकून। अंदर को जगाओ, सबके अंदर ईश्वर ने समान दिया है, अंतर इतना है कि हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसे सोचना नहीं चाहते। जिस दिन अपने अंदर की आत्मा में परमात्मा है, इसको हम समझेंगे, एनलाइट सोल हम भी होंगे, हम भी समझेंगे और दूसरों को भी रोशन कर पाएंगे। इसको मैंने तब समझा जब उन्होंने पेंटर बताया, मैं सिंपल उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जब सरकार से सहायता नहीं लेती थी तो बंद कमरे में पेंटिंग बनाती थी और सड़कों पे खड़े होकर 10-10 रुपए के कार्ड के रूप में, कभी रोटरी क्लब कभी लॉयंस क्लब में 10-10 रुपए में बेच दिया करती थी मैम, उससे शाम का खाना उन बच्चों का हो जाता था, बहुत कार्ड बेचे सड़कों पे। फिर स्थिति ये हुई, क्या करूं, अरे आप यहीं आ जाते, इतनी देर से क्या पता सुना या नहीं सुना, हम तो बहुत भूल गए लेकिन हम आपसे ये कह, यही अगर कोई प्रॉब्लम है तो कम आउट, सिंपल। तो वो पेंटर, जरूरत बढ़ती गई, बच्चे बढ़ते गए, आवश्यकताएं बढ़ती गई, मेरे समझ में नहीं आया ये 10-10 रुपए कार्ड बेच के मैं इतने सारे बच्चों को कैसे पालूं। तो ईश्वर ने एक दिन कहा, दर्द बिकता है यहाँ पे, दर्द बहुत जरूरी है, दर्द दवा के आविष्कार के लिए जरूरी है। मेरा ही दर्द सही समझ लूं लेकिन शायद दवा का आविष्कार हो जाए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं नॉन स्टॉप पेंटिंग मैराथन करूं, 24 घंटे में दर्द जागेगा, शायद 48 में जागेगा। फिर मुझे लगा 72 घंटे, यानी कि 3 दिन 3 रात तो मैं खड़ी हो ही जाऊंगी इन बच्चों के लिए, धीरे धीरे दर्द बढ़ेगा। ये तो कल भी खड़ी थी, अरे ये तो आज भी खड़ी है, अरे ये तो अब भी खड़ी है, तो मेरी पेंटिंग बिकेगी और बच्चों की रोटी का इंतजाम होगा। तो मैं 72 घंटे लगातार जयपुर में स्टैचू सर्कल पे खड़ी रही और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ना बैठना था, ना खाना ना था, ना सोना था, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि एक पेंटिंग भी नहीं बिकी। आध्यात्म खुद बंद कमरे में जलकर बनाया जाए, मुझे लगता है आज वो समय है कि आपके अंदर की आत्माओं को हमारी आत्माओं से मिलाया जाए। और बैलेंसिंग की बात जहां तक आती है तो राम का मतलब है, जो मुझे लगता है, ऐसे ही एक दिन बच्चे ने पूछा कि माँ राम राम करते हैं, राम का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन शायद ये मतलब होता, रा से राग और म से मय, राग मय
बैलेंस ऑफ हार्ट, यानी कि खूबसूरत दिल और जो बैलेंस्ड रहे, ये बहुत जरूरी है। जिस संस्था का नाम लिया वो संस्था सुरमन, उसी को सोचकर मैंने रखी। उसका मतलब बताती हूँ। स से सुंदर हो सकते हो, उसे उत्कृष्ट हो सकते हो, रा से रागमय रहना होगा, म से मृदुल बनना होगा, न से निष्ठा रखनी होगी उस पर और खुद पर, फिर जो चाहे तुम कर सकते हो। थोड़ी सी हार्ट बीट गड़बड़ हो तो दिक्कत होती है, थोड़ी सी सांस गड़बड़ हो तो दिक्कत होती है, थोड़ी सी हवा तेज हो तो आंधी कहते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को बैलेंस कर लें, और बैलेंस करने की सारी जागृत करने की मशीन हम में ही है। आज की आधुनिकता की जो मिट्टी, जिसे हम लौकिकता या भौतिकता कहते हैं, उसको हटाएं, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानें, तो अध्यात्म तो हमारे हिंदुस्तान में रगों में बहता है। जरूरत है उसके बहाव को समझने की और उसके साथ बहने की। वंदे मातरम। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद मनन बहन की समाज सेवाएं सुनकर सबका दिल गदगद हो गया। ये सेवा के साथ साथ परमात्मा हम बच्चों को एक रूहानी सेवा भी सिखाते, अन्न दान, वस्त्र दान, नेत्र दान के साथ साथ अगर ज्ञान दान भी साथ साथ चलता रहेगा तो मनन बहन और अधिक सेवाओं के अंदर सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ती जाएंगी। आपने सभी का आवाहन किया, जग कल्याणी तू वरदानी शक्ति अवतार है, घर परिवार की दूरी नारी, तुझसे ही संसार है, तू जान ले पहचान ले तो जग का बेड़ा पार है, सभी नारियों का आवाहन किया समाज सेवा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सुंदर समय है, नुमा शाम का समय। हमारे भारत के अंदर इस समय महिलाएं अपने घर में दियाबत्ती करती हैं, तुलसी के आगे भी दियाबत्ती करती, ध्यान करती हैं, प्रार्थना करते हैं। तो चलते हैं अभी हम इस नुमा शाम की सुंदर वेला में अपने मन को उस परम सत्ता के साथ जोड़ने के लिए, और उसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुंबई नवी से आई हुई आदरणीय राजयोगिनी शीला बहन। पिछले 42 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है और नवी मुंबई में आप इस समय सेवारत हैं। नवी मुंबई में आपने गवर्नमेंट से आपको मुंबई भूषण पुरस्कार महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में भी प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए शब्द कहूंगी जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया। फूलों से पूछा तो कहा जिंदगी, तो कहा चमकना है जिंदगी, आपको देखकर हमने समझा कि ईश्वर पर अर्पण होकर सेवा करना है सबसे अच्छी जिंदगी। ऐसी ही जिंदगी बनाने के लिए हम अपने मन को ईश्वर से कैसे जोड़ें, वो मेडिटेशन कराने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय शीला बहन जी को। इसलिए सभी कैसे बैठेंगे, लगन की अगन को जलाकर बैठिए, जमाने के अफसानों को थोड़ी देर के लिए भुलाकर बैठिए, प्रभु की छाप को दिल में लगा के बैठिए, प्रभु प्रेम को दिल में कैसे समाएं वो सिखाने आई हैं शीला बहन जी। कैसे बैठिए, कैसे बैठिए शीला बहन।
ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, माननीय सम्माननीय मंच और मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों, हम बहुत ही समय से सुंदर सुंदर विचार सुन रहे थे। अब हम सभी चलेंगे उस प्रभु परमात्मा के साथ प्रीत जोड़ेंगे, क्योंकि सर्व समस्याओं का हल, सर्व दुखों का हल जो है वो एक ही है, वो परमात्मा पिता के साथ प्रीत जोड़ना। वैसे भी नारी जो होती है वो एक दीप स्तंभ के समान होती है, जो सारे संसार को दिशा दिखाती है। नारी तो एक महान इतनी हस्ती है, एक महान शक्ति है, विभूति है, जो संसार को नैया से पार कराने वाली है। जब शास्त्र में बताते हैं कि युधिष्ठिर भैया और यक्ष का जब संवाद चल रहा था, तब यक्ष ने पूछा कि भूमि से भारी कौन है, तब युधिष्ठिर भैया ने जवाब दिया, युधिष्ठिर भैया ने कहा कि भूमि से भारी माँ होती है, माता होती है, जो भूमि से भी भारी है, स्तुति योग्य है, सम्माननीय है। नारी वो शक्ति है, कहते हैं 10 अध्यापकों के बराबर एक पिता होता है और 100 पिताओं के बराबर एक माता होती है, एक माता होती है। माँ में ईश्वर ने ऐसे ऐसे गुण भर दिए हैं जो संसार में अपना रूप हर एक घर घर में उसने पैदा किया है। लेकिन वर्तमान समय में आध्यात्मिकता और आधुनिकता में इसमें बैलेंस रखने के लिए हमारे जीवन में सबसे आवश्यक चीज है, वो है परमात्मा प्रेम, ईश्वर के साथ प्रीत रखना। जब हमारी प्रीत परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तब हमारा जीवन मौल्यवान बनता है। इतिहास के अंदर जितनी भी नारियां होके गई, उन सभी नारियों ने जो जो कर्तव्य किया है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समन्वय रखने के लिए हमें राजयोग की बहुत आवश्यकता है। जब अपने जीवन के अंदर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तब ये दोनों का समन्वय सहज ही रूप से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि महिला जीवन के अंदर ऑटोमेटिक ही महिला ये शब्द में माना जिसमें महानता है, ही माना जिसमें हिम्मत है, और ला माना जिसमें लालन पालन करने की शक्ति है, जो परमात्मा ने नेचुरल रूप में दी है। लेकिन उसमें जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो उससे हमें जीवन जीने की कला आ जाती है। जैसे नारियों में भोजन बनाने की कला होती है, सिलाई करने की कला होती है, सबके साथ प्यार से व्यवहार करने की कला होती है, वैसे ही जीवन जीना भी एक कला है। क्योंकि जीवन ये ईश्वर से मिली हुई एक गिफ्ट है, और इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजयोग का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। राजयोग का प्रयोग करने के लिए सुबह से लेकर रात तक हम अपने मन को परमात्मा से लगाए। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन मना भव, अर्थात तुम्हारा मन मेरे से लगाओ। क्योंकि मन को सुचारू रूप से चलाना ये है जीवन जीने की कला। अब मन को परमात्मा से लगाना यही सबसे बड़ी कला है। तो चलिए हम अभी राज योग का अभ्यास चंद मिनट के लिए करेंगे। सभी सीधा बैठेंगे और हम आपको जो जो बताएंगे वो आप अपने मन में उसी भावना को प्रेरित करेंगे, और थोड़े समय के लिए अनुभव करेंगे कि हम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परमात्मा के पास उसके गोदी में बैठे हैं। तो चलिए अपने मन को प्रभु प्रेम में डुबो दीजिए। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ, मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा इस शरीर से निकलकर आकाश तत्व में उड़ रहा हूँ, उड़ते उड़ते मैं आत्मा सूक्ष्म लोक में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं उनसे मंगल मिलन मनाते, मैं आत्मा उससे भी ऊपर लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में जा रही हूँ, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, मुझ आत्मा का घर ये मुक्ति धाम जिसे शांति धाम भी कहते हैं, उस शांति धाम में मैं आत्मा पहुंच चुकी हूँ। आहा कितनी शांति है, मेरे सन्मुख मेरे आत्मा के पिता परमात्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे प्यारे पिता शिव बाबा है, मेरे आत्मा के पिता है, जो सर्वशक्तिवान है, उस परमात्मा से मैं आत्मा सर्व शक्तियां अपने अंदर भर रही हूँ। ओहो प्यारे पिता, आप मुझे शांति से भरपूर कर रहे हैं, मुझे पवित्रता से भरपूर कर रहे हैं, मेरे अंदर संपूर्ण शक्तियों का स्रोत आपसे मैं ले रही हूँ। ओहो प्यारे प्रभु, आप मेरे माता पिता बंधु सखा हो, आपने तो मेरे बैटरी को आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर दिया। प्यारे पिता, मैं कितना न शुक्रिया करूं आपका, बस मैं सदा आप में ही समाई रहूं, आपसे शक्तियां वरदान प्राप्त करती रहूं। प्यारे परमात्मा, मैं दिन भर सदैव शांत रहूंगी और मेरे से जो भी आत्माएं मिले उनको भी शांति बांटूंगी, सारे विश्व को पांच तत्वों को भी शांति दे रही हूँ। यही शांति शक्ति सारे विश्व को देकर विश्व को महान बनाऊंगी। परमात्मा, मैं सदैव आपके याद में मगन रह कर के सर्व विघ्नों को समाप्त करूंगी। अब मैं फिर से आत्मा नीचे नीचे इस धरती पर आ रही हूँ, फिर से इस शरीर में अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होती हूँ। फिर से मेरी आत्मा को मैं निहार रही हूँ। मेरी आत्मा पहले से ज्यादा चमकवान है, शक्तिवान हूँ। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनकर परिवार को, समाज को, विश्व को अच्छा बनाऊंगी। ओम शांति। इस तरह से हर घंटे में 2 मिनट 3 मिनट के लिए अपने आत्मा को चार्ज कीजिए और रियल में आप अनुभव करेंगे कि आपकी आत्मा की बैटरी कितनी चार्ज रहती है। और यही अनुभव लेकर आप अपने कार्य व्यवहार में जाएंगे और दिन दुगुना चार चौगुना अपने जो भी कार्य व्यवहार को अच्छा बनाएंगे। यही मेरी शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शीला बहन ने हम सबको बहुत सुंदर अंतर यात्रा कराई और यह हमें अपने घर में जाकर अपने सेवा स्थानों पर जाकर भी करते रहना है। तो कैसे भी नेगेटिव परिस्थिति आएगी, जब हमारी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होगी तो उस परिस्थिति को भी हम सहज पार कर लेंगे। हमको हमारे शास्त्रों के अंदर कई संतों का ऐसा मिसाल मिलता है कैसे उन्होंने नेगेटिव परिस्थिति में से भी पॉजिटिविटी निकालकर अपने मन को ठीक रखा। मुझे एक दृष्टांत महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत तुकाराम जी का याद आ रहा था। उनके सामने एक ऐसी बार परिस्थिति आई, नाम सुना होगा तुकाराम जी का। उनको कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार गांव वालों ने सोचा, आज तो हम इनको क्रोध दिला के रहेंगे, इनका अपमान करेंगे। और उन्होंने क्या किया, सब्जियों की माला पहना दी तुकाराम जी को, माथा मुड़वा दिया, गधे पर बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाया। ऐसा कोई हमारे साथ व्यवहार करेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। जब पहुंचे चक्कर लगाकर उनके घर के सामने लाके उनको खड़ा कर दिया, उनकी पत्नी बहुत गुस्सा करने लगी तो तुकाराम जी ने कहा, अरे भगवान गुस्सा क्यों करती हो, आज तो बहुत अच्छा हुआ, एक हफ्ते की सब्जियां हमारे घर में फ्री आ गई। और मेरी गर्मी के दिन थे, थोड़ा सिर में खुजली हो रही थी, इन्होंने मेरे बाल मुंडा दिए, बहुत अच्छा हुआ, लेप भी कर दिया सिर पर, पूरे गांव का चक्कर नहीं लगाया था, आज तो गधे पे बिठा के घुमा दिया पूरे गांव में, कितना अच्छा हुआ। ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में भी उन्होंने अपने मन को अचल बनाए रखा। ये शक्ति उनके पास कहाँ से आई थी, आध्यात्मिकता से आई थी। ऐसी ही शक्ति हमको मेडिटेशन से मिलती है। अब मैं इस कार्यक्रम का अंत में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय शारदा दीदी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। शारदा दीदी जी से वैसे तो आप सब परिचित होंगे, फिर भी मैं आपके लिए दो शब्द कहूंगी। पिछले 50 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। 1970 में अपना जीवन समर्पित करके भारत और भारत से बाहर कई देशों में आपने सेवाएं की। आपने कुछ समय तक टीचिंग जॉब भी किया, देश विदेश में अनेक सेवाएं की, अफ्रीका नेपाल आदि में सेवाएं की। आप हेल्दी हार्ट रिसर्च फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रस्टी भी हैं। आप एथिकल कमेटी ऑफ डॉक्टर जीवराज मेहता हेल्थ फाउंडेशन अहमदाबाद के मेंबर भी हैं। समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप अनेकों आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। और यहाँ शांतिवन में इस विश्वविद्यालय में जो भी ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं उसमें भी आप हमारी आदरणीय दादियों जी के साथ बहुत मददगार बनते हैं। आपके लिए मैं दो शब्द कहूंगी, भोले भंडारी शिव की, आप संतुष्ट मणि हैं, शिव की शक्ति अष्टभुजी और दिव्य गुणी हैं, ज्ञान अमृत बरसाती हैं आप, आपकी मीठी ओजस्वी वाणी है, अथक सेवाधारी शारदा माँ वरदानी और महादानी है, शारदा माँ वरदानी और महादानी है। अथक शिव उद्बोधन सुने।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के रक्षक, गुणों के भंडार परमात्मा पिता की, आप सर्व स्नेही संतान आज के सत्र की मुख्य अतिथि मनन बहन, सम्माननीय मंच और आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, काफी समय से आप सुन ही रहे हैं और सुनते सुनते स्वयं में समाते समाते आखिर सुनने की लिमिट होती है। विज्ञान कहता है 45 मिनट से ज्यादा सुनना उसके अंदर नहीं जाता है, लेकिन आप सबके धीरज की बहुत बहुत सराहना करती हूं कि आप पिछले 6:45 से लेकर के अभी 7:45 तक 2 घंटे से बहुत शांति से हमारे सभी वक्ताओं को बड़ा धीरज से सुन रहे हैं। इसलिए आपका बहुत समय नहीं लेंगी। एक नाविक नाव चलाकर के अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसकी नाव में एक नौजवान युवक, एक साहित्यकार और एक वैज्ञानिक बैठे थे और नाविक नाव चला रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद वो नौजवान युवक पूछता है, अरे नाविक, तूने सिनेमा देखा है? नाविक ने कहा, मैं इतना ही कमाता हूं जो अपने परिवार की पालना कर सकूं, सिनेमा देखने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कहा, चौथा जिंदगी तेरी पानी में गई। थोड़ा विचार में पड़ गया लेकिन अपनी नाव चलाता हुआ आगे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वैज्ञानिक ने पूछा, अरे नाविक, तूने रॉकेट देखा है? नाविक कहता है, ये कौन सी चिड़िया होती है? नाविक सोचने लगा, ये बताने की बजाय कि रॉकेट क्या होता है, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वैज्ञानिक ने कहा, तेरी आधा हिस्सा जिंदगी पानी में गई। थोड़ा और सोच में चला गया, पतवार से नाव चलाता आगे बढ़ रहा था। इतने में साहित्यकार ने पूछा, नाविक तूने कितनी पढ़ाई की है? नाविक ने कहा, अगर मैं आपकी तरह पढ़ा होता तो मैं नाव पर बैठकर जाता, नाव चला करके नहीं जाता। मेरे माता पिता के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मैं मेहनत करके अपना जीवन यापन करता हूँ और साथ साथ अपने माँ बाप की भी सेवा करता हूँ। का तेरी तीन हिस्सा जिंदगी पानी में गई। नाविक बड़े प्यार से, बड़े शांति से नाव चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। नाव ठीक नदी के बीच पहुंची और नदी में बहुत जोर से तूफान आया। अब बॉल नाविक के हाथ में थी और नाविक उनको पूछता है, आपको तैरना आता है? समझ गए कि मेरी तो तीन हिस्सा जिंदगी पानी में थी, आपकी तो सारी जिंदगी पानी में गई। भाव को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। दो घंटे से चर्चा चल रही है, बैलेंस, आधुनिकता और आध्यात्मिकता। आधुनिकता से आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि उसको किस प्रकार से मिस इंटरप्रेट किया गया है। पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, घूमना, क्लब्स में जाना, होटल्स में जाना, पब्स में जाना, नाइट क्लब्स में जाना, क्या ये आधुनिकता है? इसी का नाम आधुनिकता है। आज तीन दिन से आप इस शांतिवन के परिसर में हैं। आप इस परिसर में, मैं समझती हूँ, प्रैक्टिकल में महसूस कर रहे होंगे, आधुनिकता भी है, आध्यात्मिकता भी है और उसका बैलेंस भी है। और इसको देखते हुए आप स्वयं बहुत कुछ सीख भी गए होंगे और सीख भी रहे होंगे और प्रैक्टिकल में अपने स्थान पर जाकर इसी प्रकार की आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बैलेंस, और वो बैलेंस क्या कमाल करता है। मैं समझती हूँ आप सभी ने सर्कस देखी होगी, देखी है, सर्कस देखी है। सर्कस में वो नट क्या कमाल करते हैं। सर्कस है बैलेंस की कला। पूर्व वक्ताओं ने किस किस बात में बैलेंस चाहिए और वो बैलेंस ना होने के कारण आज इस विज्ञान और भौतिकता के विकास में और उसकी उन्नति की चकाचौंध में हमारा जीवन विषमताओं से, समस्याओं से, अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। कहा गया, जो जो दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया, आज की वस्तु स्थिति प्रैक्टिकल में यही है। जितना समस्याओं का समाधान इस बुद्धिजीवी वर्ग की उस बुद्धि के द्वारा हो रहा है, उतनी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आवश्यकता है उस दैवी सभ्यता की, उस ईश्वरीय सभ्यता की, जो स्वयं परमात्मा पिता इन सर्व समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे याद आता है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिस दिन राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाएगा वो राजनीति मृत प्राय हो जाएगी। आज आध्यात्मिकता को धर्म से संबंधित कर दिया गया है। आध्यात्मिकता धर्म नहीं है, ये एक आदर्श मूल्यनिष्ठ अलौकिक दिव्य जीवन की एक सुंदर श्रेष्ठ कला है। और ये कला स्वयं परमात्मा पिता हम आत्माओं को सिखलाते हैं, और उसके लिए उन्होंने हमें स्वयं स्वयं को महसूस करने के लिए कहा। नहीं तो आज के इस वैज्ञानिक युग में जिस नारी ने पुरुष को जन्म दिया, आज उस पुरुष की सुरक्षा के लिए वो असुरक्षित है। जिस पुरुष को नारी ने जन्म दिया, आज वही उसके सामने है। आधुनिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, इतिहास के पन्नों को पलट करके देख लीजिए, रिपीट नहीं करती हूं। अपनी अंतरात्मा को महसूस करें। पहले भी कहा गया, मोबाइल्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, आईटी, गूगल, इन सबसे क्या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके मॉडर्न बन रहे हैं? क्या वो हमको वैल्यू सिखा रहे हैं? आवश्यकता है। आप यहां देख रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रश्न है उसके उपयोग और सदुपयोग की और दुरुपयोग की। आध्यात्मिकता की कमी के कारण आज ये सारे साधनों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। फेसबुक चैटिंग है, मोबाइल चैटिंग है, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परमात्मा पिता ने आकर सच में वो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र दिया है। जिस दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र ने इस मन रूपी कंप्यूटर को क्लिक किया है, उस कंप्यूटर में भी जितना उसमें सॉफ्टवेयर है उतना ही वो जवाब देगा, उससे अधिक नहीं। लेकिन इस मन रूपी कंप्यूटर में बहुत कुछ भरा हुआ है। दैवी संस्कार भी है, मानवीय संस्कार भी है और आसुरी संस्कार भी है। लेकिन आप कहां क्लिक कर रहे हैं? आपके अंदर वो दिव्य बुद्धि, वो विवेक जिसका सदुपयोग होना चाहिए, वो कौन सी राह पर जा रहा है?
आज चिंता इस आधुनिकता में सबको यही हो रही है कि आखिर भी इस विश्व का भविष्य क्या होगा। इतनी प्रोग्रेस होते हुए भी यह अनिश्चितता क्यों? जरूर अंदर से महसूसता है कि संस्कृति टोटल पतन की ओर जा रही है, मूल्य नष्ट हो रहे हैं। अब समय क्या चाहता है? फिर से अपने अंदर जो छिपी हुई अपनी एंशियंट विजडम है उसको फिर से जागृत करें। 3 दिन के राजयोग शिविर में आप रोज प्रातः सुन रहे हैं, वही है प्रैक्टिकल में आध्यात्मिकता, वो मूल्य जो हमें उन भावों से भर देते हैं, जैसा कि मनन बहन ने भी कहा, सब मुझे अपने लगे और सबको मैं अपना लगूं। मैं समझती हूं आप सबने यह महसूस किया होगा कि सब अपने हैं और हम सबके हैं और ये सारा एक परिवार है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मैं धरा पर नहीं आया वैकुंठ बनाने, मैं धरा पर नहीं लाया स्वर्ग का संदेश, लेकिन इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, हमारी खोई हुई वो संस्कृति, हमारा खोया हुआ वो रामराज्य, हमारा खोया हुआ वो मनुष्य और प्रकृति की हार्मनी, आत्मा और शरीर की हार्मनी, दोनों का परस्पर बैलेंस, उसका चरित्र चित्रण, फिर से उन मूल्यों को हमारे चरित्र में ला करके पुनः वही देव स्वरूप नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए आए हैं, और उसके लिए ये ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने से हम अपनी सभी बुराइयों पर, अपने अवगुणों पर, अपनी कमियों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके एक ऐसा सुंदर समाज जहां आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों का बैलेंस है, उसकी रचना, उसकी स्थापना हम सभी कर रहे हैं, जो हमारा ये जीवन श्रेष्ठ बनेगा। कहा जाता है कलम और नारी संसार का परिवर्तन कर सकती है। कलम में भी वो ताकत है जो वो जो लिखेगा मनुष्य उस पर विश्वास करेगा, और नारी में तो वो शक्ति है। उसने कितनी महान आत्माओं को जन्म दिया और उन महान आत्माओं की वो प्रेरक शक्ति रही है, वो उसके अंदर की आध्यात्मिकता है, वो उसके अंदर की वो दिव्य शक्तियां हैं। इसलिए आज के इस समाज और विश्व को देखकर हर एक का मन दुखी अशांत क्या होगा, लेकिन मैं समझती हूं यहां 3 दिन में हम सभी के अंदर एक नई आशा की किरण, एक नया ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है, जिसने एक नई दिशा, एक नई राह, एक नई प्रेरणा सभी को दी है। तो हम सभी के लिए एक आशा की किरण बन जाएं, हर थकी राह को मंजिल से मिला दें, हर दुखी सास को हम फूलों सा खिला दें, पर्दे नफरत के जो लगाए हैं इस दुनिया में, प्यार के हाथ से हम उनको हटा दें और उनका जीवन उस आध्यात्मिकता और आधुनिकता का बैलेंस रखते हुए सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न करके एक सुंदर स्वर्गिक दैवी दुनिया की पुनर्स्थापना अपने उस सर्वशक्तिवान पिता शिव बाबा के साथ करें। और मैं समझती हूँ आप सबके अंदर कुछ भावनाएं, कुछ विचार और आप कुछ गुनगुना रहे होंगे, आप व्यक्त नहीं कर रहे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मैं ही कर देती हूँ। साज जन्नत के तार छेड़कर, साज जन्नत के तार छेड़कर ये दिल गुनगुना दिया, पाना था सो पा लिया, अब न रही कोई आरजू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शारदा दीदी जी, आपने मॉडर्न माना एक नई सोच निर्माण और विकास, साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी हो तो वैल्यूज की मिठास है, ऐसा सुंदर संदेश आपने हमें दिया। हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं, सभी बैठेंगे दो मिनट के लिए। 9 बजे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हेल्थ के ऊपर बहुत सुंदर क्लास कराएंगे, आप सभी यहाँ जरूर आइएगा। आज के इस कार्यक्रम को मैं दो शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगी, आधुनिक। आधुनिक अर्थात आ धुन एक लगा, आ धुन एक लगा, आधुनिक बन जा, आत्म को पहचान परमात्म में रम जा, आत्म को पहचान परमात्मा में रम जा, आ आध्यात्मिक बन जा, आध्यात्मिक बन जा। कबीर दास जी का दोहा है बहुत सुंदर, दो युवतियां जा रही थी, युवती ने बहुत सुंदर नथ पहनी हुई थी और महिमा करती जा रही थी, मेरी नथनी कितनी सुंदर है जो मेरे प्रेमी ने मुझे दी है। पीछे पीछे कबीर दास जी जा रहे थे, बहुत सुंदर शब्द उन्होंने कहे, नथनी दी यार ने सिमरन बारंबार, नाक दी करतार ने ताही दिया विसार। तो जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया उसको हम अपने जीवन में कभी ना भूलें, आध्यात्मिक होकर चलेंगे तो हमारा जीवन कितना सुंदर श्रेष्ठ बन जाएगा। सभी वक्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साथ साथ आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, शांतिपूर्वक आपने सत्र को सुना। अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय शारदा दीदी जी से और उषा बहन जी से, आप हमारे आज के वक्ता आदरणीय रेणु बहन जी का शॉल पहना करके सम्मान करेंगे और हम सब करतल ध्वनि से आपका सम्मान देखते हुए हर्षित होंगे। जोरदार ताली बजा करके हमारी रेणु बहन का को बधाई देंगे। ओम शांति। एक मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे।
किसी को भूलूं खुशियां तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुन गुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुझे।